नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस चरण के अंतर्गत दिल्ली में 7 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों की यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 16.99 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में जोरबाग से मीठापुर तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। ये कॉरिडोर जसोला, अपोलो, लाजपत नगर, एनएसआईसी ओखला और मीठापुर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे सेंट्रल तथा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बीच यात्रा और आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये सेवा केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से प्रमुख सरकारी कार्यालयों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 35 यात्रियों की क्षमता वाली 2 हाइड्रोजन फ्यूल बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें GPS ट्रैकिंग और CCTV की सुविधाएं होंगी। ये बस सेवा कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। हर 30 मिनट में चलने वाली ये बसें कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, इंडिया गेट और नेशनल स्टेडियम सहित कई प्रमुख स्थानों को कवर करेंगी। DMRC के अनुसार ये पहल स्वच्छ ऊर्जा और हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से जोड़ने वाला 300 मीटर लंबा नया फुटओवर ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब यात्री रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच सुगम और सुरक्षित आवागमन कर सकेंगे। इस फुटओवर ब्रिज पर एस्केलेटर, लिफ्ट, मूविंग वॉक, CCTV और पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू LPG आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और LPG प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक LPG के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है। कल से शुरू होने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के ईंधन, आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये अभियान प्रधानमंत्री की 7 अपीलों से प्रेरित है।
दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। तो मेट्रो का उपयोग हर मंडे, उसे मेट्रो डे के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसका पूरा उपयोग करेंगे।
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों के उपयोग और बिजली बचत पर भी विशेष बल दिया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ चल रहे संवाद कार्यक्रम को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर लिया गया है। श्री सूद ने कहा कि तकनीक आधारित प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के साथ सीधा संवाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। शिक्षा निदेशालय के अनुसार ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। राजधानी के सभी 28 शिक्षा जोन में कुल 11 ऑनलाइन संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। अगला ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज सतत विकास, ऊर्जा संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा दक्ष व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। श्री चहल ने बताया कि कल से एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए 4 आवासीय क्षेत्रों से शटल बस सेवा शुरू होगी, जिसे सोमवार से 14 अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग पर 50% छूट दी जाएगी। महापौर प्रवेश वाही ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हुए लोगों से ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और यातायात कम करने के लिए नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में श्री वाही आज मेट्रो और ई रिक्शा से सफर कर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज डॉ बीआर आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संधू ने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो एक शैक्षणिक यात्रा के समापन और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जन सरोकारों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, शोध, स्टार्टअप और तकनीक के माध्यम से विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। श्रीमती गुप्ता ने छात्रों से करुणामय बने रहने का अनुरोध किया।
14वां दीक्षांत समारोह आज हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ संपन्न हो, लगभग 1000 स्टूडेंट्स को आज डिग्री दी जाने वाली है। 19 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई हमारी डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर शिक्षा दे रही है, एनुअली यहाँ से पढ़ा रही है। इतना समझ लीजिए कि सक्सेसफुल बनिए पर सेंसिटिव भी रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए पर कम्पैशनेट भी रहिए।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज के समय में तकनीक और वैश्विक चुनौतियों के बीच युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि निरंतर सीखने, नवाचार तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मदर डेयरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की कीमतों में 2 रूपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरें आज सुबह से लागू हो गई हैं। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार किसानों से दूध खरीद लागत में करीब 6% वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया था। पिछले कुछ महीनों में खरीद लागत में 4 से 5 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17,800 नशीली गोलियां बरामद की, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार गाजियाबाद और हापुड़ में सक्रिय ये गिरोह स्कूटी की मदद से इन साइकोट्रॉपिक दवाओं की सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी बिना वैध प्रेस्क्रिप्शन और दस्तावेजों के इन दवाओं की अवैध सप्लाई और वितरण कर रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। वहीं संपत्ति ठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कई व्यक्तियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी बरामद की है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के रानीबाग इलाके में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में रानीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। बाहरी जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने देश भर में पिछले 24 घंटों में 14 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि कल गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को आज दिल्ली के सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के 3रे चरण की घोषणा की है। इस अभियान में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। राजधानी में आज दिन भर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली मेट्रो फेज 5B राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत तथा आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली मेट्रो कल से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के संवाद कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।